मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज 18 नवंबर 2019 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग नवंबर के मिड से आगे थोड़ा सा बढ़ चुके हैं। नवंबर आधा खत्म हो चुका है और दूसरे आधे की शुरुआत हो चुकी है। जैसे ही 2020 में हम सब एंटर करेंगे, वैसे ही एक नए दौर की शुरुआत होगी और यह नया दौर होगा एग्जामिनेशन का। फरवरी के मिड तक आते आते आप देखते हैं कि 10th और 12th CBSE के एग्जामिनेशन की शुरुआत हो जाती है। कुछ ही दिनों के बाद बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। कुछ महीनों के बाद मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सर्विस की परीक्षाएं होनी शुरू हो जाएंगी और भी दूसरे राज्यों के साथ भी ऐसी स्थिति होगी। फिर मई के लास्ट पहुंचते पहुंचते IAS के एग्जाम शुरू हो जाएंगे और फिर इस बीच में कॉलेजेस के एग्जाम तो शुरू हो ही चुके होंगे। यूं कह लीजिए कि 2020 की शुरुआत के साथ ही एग्जामिनेशन की जो दौर की शुरुआत होगी वह तो होगी ही, लेकिन इसका प्रभाव यह होगा कि आप सब के दिलों की धुकधुकी की भी शुरुआत हो जाएगी। और जैसे जैसे परीक्षा की तारीख नजदीक आती चली जाएगी, वैसे वैसे ये जो धुक धुक है इसकी रफ्तार बढ़ती चली जाएगी और यहां तक इसकी आवाजें भी बढ़ती चली जाएंगी। बोलचाल की भाषा में इसे ही हम कहते हैं डर लग रहा है। तो कुछ ऐसा इत्तफाक होता है कि पिछले दिनों मेरे पास कुछ मेल आए हैं जिसमें स्टूडेंट ने इस भय से मुक्ति पाने के उपाय के बारे में जानना चाहा है कि ये डर क्यों लगता है, कैसे इससे छुटकारा पाएंगे, इससे जरूर हमारे बारे हमको इसके बारे में आप कुछ ना कुछ बताइए। तो मुझे लगा कि नहीं, ठीक है, ये समय आ चुका है जब मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि यदि आप इस भय के कारणों को समझ लेंगे, कुछ उपाय अभी से अप्लाई करने लगेंगे, तब परीक्षा तक पहुंचते पहुंचते डेफिनेटली आपकी स्थिति हो सकती है कि थोड़ी सी बेहतर हो सके और आपको इसके अच्छे नतीजे भी मिल सके। इसलिए बेहतर होगा कि कुछ समय पहले ही इसकी शुरुआत की जाए। और यही सोचकर मित्रों, मैंने फिर फैसला किया कि नहीं, अब मुझे भय के बारे में ही कुछ बातें करनी चाहिए। आइए तो इसकी शुरुआत करते हैं। और मैं, हो सकता है कि लास्ट में आप सबसे अर्ज करना भूल जाऊं, मैं डेफिनेटली आपसे ये अर्ज भी करना चाहूंगा कि आप सब अपने अपने भयों के कारणों को लिख करके भेजें कि आपको किससे डर लगता है। अगर आप समझ सकते हो तो क्यों डर लगता है। आप ये भी लिख सकते हैं कि मैंने इसके बारे में ये उपाय किए लेकिन मुझे अभी भी उस डर से छुटकारा नहीं मिला है। यानी कि डर के बारे में आप यदि मुझे अपनी प्रतिक्रियाएं लिखकर भेजते रहेंगे तो मैं ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से आप लोगों की समस्या को शायद सुलझाने में सफल हो पाऊंगा। तो आइए आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो डर नाम का जो जंतु है, जीव है, खौफनाक चीज है, आप कह लीजिए, ये रहता कहाँ है, कहाँ रहता है, इसका एड्रेस क्या है। क्योंकि जब तक हम इसके एड्रेस को नहीं पहचान पाएंगे, ठीक से नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम खोजकर उसकी हत्या कैसे करेंगे, उसे नष्ट कैसे करेंगे। यहां हत्या और नष्ट करने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिना इसको मारे हमें छुटकारा नहीं मिल सकता। इसके साथ हम रह नहीं सकते, साथ रहना बड़ा मुश्किल होता है, इससे छुटकारा पाना होता है। तो आइए पहले इसके पता को जानने की कोशिश करते हैं, इसके निवास स्थान को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और बहुत ही व्यावहारिक स्तर पर। दोस्तों, आप अपने चारों तरफ के लोगों को देखिए और उनके बारे में थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए। बहुत से लोगों के बारे में आप पढ़ते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए। भय को समझने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। सोचना इसलिए पड़ेगा कि देखिए, एक चीज होती जैसे कि आग, ठीक है, तो आग जलाती है, तो ये आग का गुण है कि वो आग किसी को भी जलाएगी, जो भी उसे छुएगा उसे वो जलाएगी, फिर चाहे वो राजा हो या रंक हो, आग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह उसका गुण है, या कह लीजिए उसकी विशेषता है, यह उसका चरित्र है। हम सब उसके बारे में जानते हैं कि आग ऐसा करती है, चाहे इसे हम अपने अनुभव से जान पाए हों या दूसरों के अनुभव से जान पाए हों या पढ़कर जान पाए हों, क्योंकि जानने के तो बहुत से माध्यम हैं। तो जब हम जान लेते हैं कि यह आग है और आग जलाती है, तो देखिए, भय तो हमें आग से भी लगता है, लेकिन यहां हम उसके लिए भय शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, है ना। आग जलती हुई देख करके आप नहीं कहते कि मुझे डर लग रहा है, क्यों नहीं कहते? क्योंकि आपको आग का चरित्र मालूम है, उसकी विशेषता मालूम है, और उससे कैसे बचना है आपको इसकी भी जानकारी है। और जब भी ऐसी स्थिति आती है, आप अपनी उस जानकारी का इस्तेमाल करके उस आग के भय से छुटकारा पा जाते हैं, या उससे होने वाला जो नुकसान हो सकता था उसे आप होने से रोक देते हैं। तो यह है आग के बारे में। लेकिन जब हम भय की बात करते हैं तो मुश्किल यह है कि भय को हम ऐसे आग के रूप में पहचान नहीं सकते कि इसी से भय लगता है या इससे सबको भय लगता है। उदाहरण के तौर पर भूत आप ले लीजिए, भूत से सबको डर लगता है, ऑलमोस्ट ज्यादातर लोगों को डर लगता है, सबसे तो नहीं कहूंगा, लेकिन आप देखिए कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो भूत पर विश्वास ही नहीं करते, और अगर उस पर विश्वास ही नहीं कर रहे हैं तो उससे भय लगने का सवाल ही नहीं है। आप आचार्य श्री राम शर्मा आचार्य जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ करके देखिए, उन्होंने लिखा है कि कैसे एक जो बहुत बड़ा मकान था उसमें लोगों को लगता था कि इसमें भूत रहता है और रात में वो लोगों को परेशान करता है। श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा कि नहीं नहीं मैं तो वहीं जाकर के रहूंगा, और वहां जाकर के वो बकायदे रहे। आप रजनीश की ऑटोबायोग्राफी पढ़ लीजिए, जबलपुर जब वो गए थे तब उनके साथ भी यही हुआ था कि एक भुतहा मकान उनको दे दिया गया था रहने के लिए, वहां वो बकायदे रहे और उनको कुछ नहीं हुआ। तो अब क्या कहा जाए? तो ऐसा नहीं है कि भूत से सबको डर लगता है, कुछ ज्यादातर को लगता है, कुछ को डर नहीं लगता। चलिए हम पढ़ने की बात पर आते हैं, मैथमेटिक्स या साइंस ले लीजिए, बहुत से लोगों को मैथमेटिक्स गणित से और साइंस से बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं ये कितना कठिन होगा। हमारे तो बिल्कुल भी बस की बात नहीं है, लेकिन आप पाएंगे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मैथमेटिक्स को एंजॉय करते हैं, वह उनके मनोरंजन का साधन होता है, उसके बिना वो रह ही नहीं पाते। बहुत से लोग हैं कि उसके साथ दो मिनट के लिए नहीं रह पाते, और ये जनाब हैं कि उसके बिना नहीं रह पा रहे हैं, रात दिन उनके दिमाग में मैथमेटिक्स ही चल रहा है। आपने सुपर 30 फिल्म में इसको थोड़ा बहुत अनुभव भी किया होगा। और भी आप देखिए कि दूसरी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे कुछ लोग भयभीत हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग भयभीत नहीं भी हो रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो ब्लड देखते हैं, खून देखते हैं और बेहोश हो जाते हैं, खून देख करके बेहोश हो जाते हैं। बहुत से लोग हैं जिनको पानी का फोबिया हो जाता है, जैसे ही वो पानी देखेंगे, यानी कि नदी में पानी देखेंगे या तालाब में या समुद्र में, तो उनको बेहोशी की हालत होने लगती है। कुछ लोगों को ऊंचाई से डर लगता है। तो देखिए, ये जो मैंने अभी जो तीन बातें आपको बताई, ब्लड से, पानी से, ऊंचाई से, इस तरह की कुछ और भी चीजें हो सकती हैं, और भी घटनाएं हो सकती हैं। दरअसल ये भय नहीं होता है, इसे थोड़ा सा समझ लीजिए, यह एक तरीके की बीमारी होती है, जिसे हम कहते हैं फोबिया जैसा कुछ होता है। ये अब पता नहीं कैसे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी चीजें घर कर जाती हैं कि जैसे ही आप उसे देखते हैं भयभीत हो उठते हैं, इतने भयभीत हो उठते हैं कि आप एबनॉर्मल हो जाते हैं। और मैंने तो खुद ऐसे व्यक्ति को देखा है कि जरा सा भी ब्लड दिखा और पता लगा वो बेहोश हो गए। मैंने खुद अब देखा है कि फर्स्ट फ्लोर पर आप उनको सीढ़ियों से चढ़ाइए और झांकने के लिए कहिए, वो नहीं झांकेंगे, और अगर झांकेंगे तो जरा सा भी देखेंगे और उनको चक्कर आने लगेगा। ये मैं दो अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बता रहा हूं। तो इस भय को हम किनारे कर देते हैं। जो दूसरे किस्म के जो भय हैं, हम उन भयों की बात कर रहे हैं। आप देखिए कि कितने रोमांचक खेल होते हैं, कितने रोमांचक, चाहे वो चट्टानों पर चढ़ने की बात हो या लहरों में पर तैरने की बात हो, नौका चलाने की बात हो, कार और बाइक रेस की बात हो। आप देखिए कि हम सब सामान्य लोग जो है वो उन सब से भयानक रूप से डर रहे हैं, लेकिन ये उसको एंजॉय कर रहे हैं, तेजी के साथ बाइक चला रहे हैं, उस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। इस तरह के स्पोर्ट्स भी आपने देखे ही होंगे। तो दोस्तों, आज मैं भय के बारे में बस इतने ही बीज आपके दिमाग में डालना चाहूंगा, यानी कि भय कहां रहता है इसके बारे में आप अपने लेवल पर थोड़ा थोड़ा सोचें, बाद में तो मैं इस पर बात करूंगा ही। तो अब आप सबसे अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।